मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 14 सितंबर 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर तथा मार्च 2019 के क्लासेस में आने का फैसला किया है। इनमें से मित्रों 3 स्टूडेंट अभी अक्टूबर नवंबर की क्लासेस के में आ रहे हैं और 3 स्टूडेंट मार्च 2019 के बैच में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अक्टूबर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं क्योंकि उनके आने के दिन अब बहुत ही कम रह गए हैं। इनके नाम है दोस्तों विभा भारती, आप मोतिहारी से हैं, जिला पूर्वी चंपारण बिहार से। अनुज सोनवानी, आपका गांव है कस्तूरी, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से। और अंकिता गुप्ता, आप जैतहरी से हैं, जिला है अनूपपुर मध्य प्रदेश से। तो विभा, अनुज और अंकिता, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 3 साथियों का जो मार्च 2019 के बैच में आ रहे हैं। और इनके नाम हैं रश्मि वर्मा, आपका गांव है बरवट, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश। प्रतीक सिंह, ठाणे महाराष्ट्र से। और धर्मेंद्र कुमार, आपका गांव है पंडरी, जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश। तो रश्मि, प्रतीक और धर्मेंद्र, आप तीनों मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को सामान्यतया मैं कुछ सूचनाएं देता हूं। सूचना यह है कि शनिवार और रविवार इन 2 दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और मित्रों आप लोगों में से बहुत दोस्तों के मेल आते हैं कि सर शनिवार रविवार को भी दिया जाए और अगर इन 2 दिनों में संभव न हो तो कम से कम शनिवार को तो डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड ही किया जाए। आप लोगों की इस भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूं और सच पूछे तो अनुभव भी करता हूं, आप लोग जो इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के प्रति आप लोगों का प्यार, सम्मान, निकटता का भाव, सहृदयता मित्रों यही झलकता है। लेकिन सच पूछे तो इस पर मैंने बहुत विचार किया है और मुझे लगा कि 5 दिन आपके लिए पर्याप्त है बशर्ते कि आप इनका सही उपयोग कर सके। शनिवार और रविवार को अगर वो ड्रॉप होता है तो अच्छी बात है क्योंकि सोमवार को फिर एक नई ताजगी के साथ आप इससे जुड़ पाते हैं। तो ये मानकर के चलिए कि अगर शनिवार रविवार को नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। शनिवार की देखिए आपको प्रेस क्लिपिंग्स शनिवार की सुबह के अखबारों में जो भी छपता है वो आपको प्रोवाइड किए ही जाते हैं। और इसके बाद रविवार के अखबारों में भी याद रखिए कि अगर कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है तो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं, आप मार्क कीजिएगा, उपलब्ध कराता। और साथ ही साथ अगर इस बीच में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है तो मैं उसे भी कवर करता हूं, महत्वपूर्ण घटना छूटने नहीं देता। इसीलिए अगर शनिवार रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर मैं नहीं दे पा रहा हूं तो आप मान करके चले कि आपका कतई कोई कुछ भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आपके नुकसान की कीमत पर मैं सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी निर्णय लूं। राइट फ्रेंड्स, शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल आपको 4 आर्टिकल्स मिलेंगे, 2 हिंदी में, 2 इंग्लिश में। एक आपको वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो मित्रों ये थी कुछ सूचनाएं। आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग भाषा और विकास, इस विषय पर कुछ बातें करेंगे। जहां तक न्यूज का सवाल है, सच पूछिए तो रेडियो न्यूज और डीडी न्यूज, उन दोनों में कुछ ऐसी बात मुझे मिली नहीं जिसको आधार बनाकर आज आप लोगों के साथ कुछ देर की गुफ्तगू की जा सके। गुफ्तगू मतलब वही विचार विमर्श किया जा सके, बातचीत की जा सके। ज्यादातर जो खबरें थी वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड थी या कह लीजिए कि इस तरह की खबरें थी जिसका बहुत ज्यादा संबंध हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से नहीं है। जहां तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की मैं आज आपको एक क्लिपिंग जो हिंदू अखबार की है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप खास कर देखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी भी मैं उपलब्ध कराऊं, लेकिन मैं देख रहा था कि आर्टिकल बहुत सरल है और इसमें पॉइंट्स भी थोड़े से ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं आज, और वो ये है कि ठीक है, आप हिंदी मीडियम से अपीयर हो रहे हैं, आपको हिंदी अच्छी आती है, अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है मान लीजिए, लेकिन दो चीजें हैं। पहली बात कि आपको जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना ही होगा, तो उतनी इंग्लिश तो अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आनी ही चाहिए। दूसरा ये कि जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो मैं ये नहीं कहता कि बिना इंग्लिश के आपका काम ही नहीं चल सकता, सवाल ही नहीं उठता है, आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जानेंगे तो काम और अच्छे से चलेगा, आपको इन्फीरियरिटी महसूस नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा। और देखिए, अंग्रेजी उतनी कठिन भाषा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, थोड़ा आत्मविश्वास अपने अंदर लाइए। तो ये मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हिंदू का जो आज मैं आपको हिंदू की क्लिपिंग्स दे रहा हूं, प्लीज इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। जो भी इंग्लिश की इस तरह की क्लिपिंग्स होती है उन्हें आप आउटराइट रिजेक्ट मत कर दीजिए कि जाओ भैया मुझे तुमसे कुछ नहीं करना है, मैं तो हिंदी की पढ़ूंगा और जो इसमें से जरूरी होती है वो तो सर करंट कंटेंट में प्रोवाइड कर ही देते हैं, वो ठीक है आपकी सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उससे आपकी भाषा तो नहीं आएगी ना अंग्रेजी की, जो कि थोड़ी सी आनी चाहिए, तो ये कीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि कुछ आपको बड़े महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे, जैसे कि जो भारत में जो वर्कफोर्स में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो केवल 1/4 के आसपास है, 24% के आसपास है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया 24%, जो दुनिया में सबसे कम है। इसके बाद फिर उन्होंने रीजंस बताए हैं कि वो क्यों कम है, यहां तक कि जो हायर इनकम ग्रुप की जो फैमिलीज हैं वो भी अपने जो पत्नियां होती हैं या घर की महिलाएं होती हैं उनको नहीं अलाउ करते हैं कि वो जाकर के काम करें। हाँ, जो मिडिल इनकम ग्रुप के हैं या लोअर इनकम ग्रुप के हैं, जरूर उनकी चूंकि आर्थिक जरूरतें होती हैं तो वहां जरूर उनका प्रतिशत ज्यादा है। फिर शादी के बाद वो नौकरी छोड़ देती हैं, किसी तरह से अगर शादी के बाद भी नौकरी चलती रहती है तो जब वो मां बनती हैं तब उनके सामने फिर एक संकट पैदा होता है, बहुत से उस समय नौकरियां छोड़ देती हैं, किसी को अपने ओल्ड पेरेंट्स को देखने के लिए नौकरियां छोड़नी पड़ती है। तो इस तरह से इसमें कुछ रीजंस दिए हुए हैं, और देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो स्टडीज आ रही हैं, शोध में जो भी सामने आ रहे हैं अध्ययन में, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलताऊ बातें लिखने से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको नंबर नहीं मिलते हैं, मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते हैं जो आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचा दें। तो मित्रों, ये आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, और दूसरे प्रेस क्लिपिंग्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। और अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। न्यूज में एक बात और भी है जो आप लोगों ने सुनी है, बताना मैं जरूरी नहीं समझता कि जो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जस्टिस हैं, उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जो 3 अक्टूबर को बनेंगे। बस एक छोटी सी खबर, हालांकि इस तरह की खबरें अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती हैं। मित्रों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, भाषा और विकास पर। आज हिंदी दिवस है, खासकर इस वजह से मैंने ये विषय चुना है। और दोस्तों, क्या सच में भाषा का विकास से कोई संबंध है? सिविल सर्विस में आप देखेंगे भाषा और सिविल सर्विस तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस और संस्कृति या सिविल सर्विस की जो संस्कृति है इस पर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि सीधे सीधे यह आपको सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि जो कहीं का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम चलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, है ना, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में तो यह है कि आप भाषा के स्तर पर आप पाएंगे कि हिंदी या जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो अपना स्थान, अपना वजूद बनाए हुए हैं। आप पाएंगे कि पार्लियामेंट में भी जब बहस होती है तो, या चाहे वो साउथ के आपके लीडर्स हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हों, उनकी कोशिश होती है कि वो हिंदी में ही बोलें ताकि पूरा देश समझ सके। ये तो है कि हिंदी में कोई बोलता है तो पूरा देश उसे समझ जाता है, चाहे भले वो टूटी फूटी ही हिंदी क्यों ना बोले लेकिन समझ जाता है, राइट? तो उनकी कोशिश होती है कि पूरा देश समझे। तो पॉलिटिक्स के लेवल पर हिंदी भाषा को लेकर के कोई संकट नहीं है। जो संकट है वो सच पूछे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, और जो संचालन होता है देश का वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर होता है। पॉलिटिक्स के लेवल पर तो निर्देशन होता है, लेजिस्लेचर में जो हमारे लीडर्स बैठे होते हैं वो कानून बना देते हैं, लागू तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। अब सवाल यह कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भाषा होगी उसी से ही कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का चरित्र बनेगा नंबर एक, और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का चरित्र बनेगा या जैसा उसका चरित्र होगा उसी के अनुसार देश का विकास भी होगा, राइट। इसी को मैंने इस रूप में लिया है कि भाषा और विकास। हालांकि सीधे सीधे सोच करके देखिए ना तो लगता है कि यार भाषा का विकास से क्या लेना देना, भाई भाषा है तो केवल बोलने की चीज है, नहीं, भाषा केवल बोलने की चीज नहीं है, देखिए केवल एक्सप्रेशन का मीडियम नहीं है, भाषा हमारे संस्कार हैं, भाषा हमारे विचार हैं, भाषा हमारा परिवेश है, और यहां तक कि भाषा हमारा क्लास करेक्टर। अगर हम कार्ल मार्क्स की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल करें तो वर्ग चरित्र भी है। अगर आप 1980 से पहले के प्रशासन को आप देखिए तो हाईएस्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, तो 79 तक जो है आप 79 से पहले तक आप केवल अंग्रेजी भाषा में ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते थे। उस समय अंग्रेजी भाषा क्या संभव थी लोगों के लिए, सामान्य व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, किसके लिए संभव थी, अपर क्लास के लोगों के लिए, क्योंकि वो महंगी थी, बड़े बड़े शहरों में थी, तो वहां जाकर के कौन पढ़ सकता था, कौन अपने बच्चों को भेज सकता था, बट नेचुरल है कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग है। तो 1980 से पहले पहले आप देखिए कि प्रशासन पर जो एक उच्च वर्ग था, तथाकथित उच्च वर्ग, उसका अधिकार था, तो स्वाभाविक है कि ये तो भारत की समस्या को नहीं जान सकते ना उतना, नो डाउट कि उसमें कुछ संवेदनशील अफसर भी होते थे, वो चीजों को जानते समझते थे, उनकी उस योग्यता पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, मैं टोटल कल्चर की बात कर रहा हूं। लेकिन 79 के बाद जब इसे हिंदी और दूसरी भाषाओं के लिए ओपन किया गया तो दूसरी पृष्ठभूमि के लोग आना शुरू हुए, रीजनल लैंग्वेज के लोग आने लगे, हिंदी क्षेत्र के लोग आने लगे, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आने लगे। तो हुआ यह कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग आ रहे थे वो अपने देश की समस्या के रूट लेवल पर परिचित थे, उससे परिचित ही नहीं थे बल्कि उसका उन्हें अनुभव भी था। तो स्वाभाविक है कि जिसको अनुभव होगा, देखिए जिसको अनुभव होगा वो उसे ज्यादा संवेदनशीलता के साथ अपना उद्देश्य बनाएगा कि यार नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसे दूर किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे लोग जूझ रहे हैं, मैंने इसको महसूस किया है, तो वह भी जूझेगा उसको हल करने के लिए। अगर मैं उससे अनुभव के स्तर पर नहीं गुजरा हूं तो मेरे लिए ठीक है, समस्या है, सरकार ने एक नीति दी है, मुझे उसे लागू करना है, लेकिन मेरी संवेदनशीलता उसके साथ उतनी ज्यादा नहीं होगी, मेरी प्रायोरिटीज दूसरी होंगी। तो सवाल प्राथमिकता की है, तो जब हम प्राथमिकता की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहली बात जनजीवन का अनुभव हो, और दूसरा हम जनजीवन से सीधे सीधे जुड़ सके, ग्रास रूट लेवल पर हम जा करके उनसे बात कर सके, सीधे उसी लैंग्वेज में उनकी स्थितियों को समझ सके और उसके अनुकूल फिर योजनाएं बना करके उन्हें इंप्लीमेंट कर सके, और जब सुपरवाइज करने जाए तो फिर सीधे उनसे बात करें। अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट से पूछूंगा कि भैया ये क्या कह रहा है, तो सबऑर्डिनेट तो ठीक ठीक अनुवाद करके बता देगा जो उसके पक्ष में होगा, कि उसको डांटना पड़े, और यह भारतीय प्रशासन की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। मित्रों, अगर समाजशास्त्री अध्ययन कराया जाए भारतीय विकास और भाषा को लेकर के, तो यह तथ्य मिलेगा, और बीच बीच में जो अध्ययन होते हैं उसमें यह उभर करके भी आता है कि भारत में दो चीजें जिसमें हम काफी पिछड़े हुए हैं उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भाषा है, एक तो विकास जिसकी बात मैंने थोड़ी सी की है जो भी मुझे वक्त मिल सका है, और दूसरा इनोवेशन। इनोवेशन में हम इतने पीछे हैं, उसका रीजन यही है कि हम अपनी भाषा में सोचते ही नहीं, अपनी भाषा में हम मनन ही नहीं करते, और जो हमारा इनोवेशन जो होता है, जो नवाचार आता है, या यूं कह लीजिए कि दिमाग जो सबकॉन्शियस लेवल पर आपको कोई चीज प्रोवाइड करता है, कोई थॉट्स देता है, वो केवल अपनी ही भाषा में देता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो बाइबल है वो अंग्रेजी में नहीं लिखी गई है, ईसा मसीह तो हिब्रू बोलते थे, हिब्रू। जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स ने अंग्रेजी में नहीं लिखे, वो जर्मन भाषा में, उन्होंने अपनी भाषा में लिखे। जितने भी महान ग्रंथ हैं दुनिया के, सब अपनी अपनी जो लिखने वाले हैं उन्होंने अपनी भाषाओं में लिखा है, क्योंकि स्वप्न हम अपनी भाषा में ही देखते हैं, याद रखिए, और जो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो अपनी भाषा में ही काम करता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं सीधे ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से चार मित्रों के नाम हैं मोनिका, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, मिराज अहमद और सौरभ पाठक नोएडा उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब दो दिन की इजाजत लेते हुए आप सबसे विदाई चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।